सप्तम तीसरा स्कंद छठा अध्याय और 11वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। अथ तस्याभितप्तस्य कतिधायतनानिह निर्विद्यन्त देवानां ताने मे गततः शृणु। इसका अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए विभिन्नांश हैं। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, शमित अर्थात शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांकितम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च पिपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि आप मुझे बताएं कि सृष्टि भगवान ने किस प्रकार बनाई है और किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो मैत्रेय जी हरिद्वार नामक स्थान पर विदुर जी के इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो एक सोचने की बात, यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि विदुर जी ने भगवान की लीलाओं के बारे में क्यों नहीं पूछा उनसे कि मुझे भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। वो भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हाँ, भगवान की जो लीलाएं हैं इतनी मधुर हैं, रस से भरी हुई हैं, उनको छोड़कर विदुर जी सृष्टि के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं। हाँ, सो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान ने सृष्टि किस प्रकार बनाई, ये जानने से हमें ये पता चलता है कि भगवान कितने महान हैं। और भगवान की महानता को जानने के बाद भगवान में श्रोता की श्रद्धा और बढ़ जाती है कि किस प्रकार पूरी सृष्टि भगवान के शरीर के रोम छिद्रों से उत्पन्न हुई है। तो इतने महान भगवान के बारे में जानने से श्रोता को भगवान की महिमा के बारे में भी पता चलता है और अपनी तुच्छता का भी अनुभव होता है, और अपनी तुच्छता का अनुभव होने से उसमें विनम्रता का भी भाव आता है, और भगवान की महिमा जानने से भगवान में श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है, जिससे वो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकता है। भागवतम में आप देख सकते हैं कि अनेक स्थानों पर विभिन्न भक्तों ने वरिष्ठ भक्तों से ये जिज्ञासा की कि भगवान ने सृष्टि किस प्रकार रची। परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी जी से ये जिज्ञासा की और सुखदेव गोस्वामी जी ने भी भागवतम में इसका विशद वर्णन किया है। सो ऐसा नहीं है, और श्रील प्रभुपाद बार बार इस बारे में चेतावनी देते हैं कि सीधे भागवतम के दशम स्कंद पर कूद कर मत जाइए, पहले इसको क्रमवार, भागवतम को क्रमवार तरीके से पढ़िए। प्रथम अध्याय से, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये जानिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जानिए कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए और क्यों हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार भगवान के बारे में जाना जा सकता है। भगवान अधोक्षज हैं, अधोक्षज का अर्थ है कि भगवान सभी हमारे भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं, अर्थात भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं जाना जा सकता। तो ऐसे अधोक्षज भगवान को किस प्रकार हम समझ सकते हैं, किस प्रकार हम जान सकते हैं, तो वो जानने की विधि भागवतम में क्रमवार तरीके से दी गई है। तो एक गंभीर भक्त को एकदम से कूद कर दशम स्कंद पर नहीं जाना चाहिए, उसको क्रमवार तरीके से भागवतम का पाठ करना चाहिए। सो भागवतम में ये वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण से किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई और भगवान ने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया, और विराट रूप जब भगवान ने लोगों को दिखाया, और भगवान ने विराट रूप अर्जुन को भी उसके प्रार्थना करने पर दिखाया। सो भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना पर उनको अपना वह रूप भी दिखा सकते हैं जिसके बारे में जानना बिल्कुल असंभव है। भागवतम में बताया गया है, यमराज जी कह रहे हैं कि यमराज जी ने भगवान की तुलना आँखों से की है। हाँ, बिल्कुल विलक्षण तुलना है एकदम। इसको पढ़ के व्यक्ति हैरान हो जाएगा। यमराज जी ने भगवान की तुलना आँखों से ही कर दी। क्यों आँखों से की? और उन्होंने कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है, सारे जीव जो हैं इसके अंदर, वो उन्होंने एक भगवान के विराट रूप की कल्पना की और सभी जीवों की तुलना भगवान के विभिन्न अंगों से की। और यमराज जी ने भागवतम के छठे स्कंद में यमदूतों से बात करते हुए उनको बताया कि देखो, जिस प्रकार शरीर के सारे अंग अलग अलग या मिलकर कभी भी आँखों को नहीं देख सकते, देख सकते हैं क्या? क्या हमारे हाथ हमारी आँखों को देख सकते हैं? क्या हमारे पैर हमारी आँखों को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो यमराज जी कह रहे हैं जिस प्रकार हमारे शरीर के सारे अंग आँखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से जो जीव हैं वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, भगवान को नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर भगवान कृपा करें तो भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, भगवान ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिससे व्यक्ति, जिससे भक्त भगवान का दर्शन एक बार नहीं, सदैव भगवान का दर्शन करते रह सकता है। और भगवद गीता में भगवान इस विधि का वर्णन भी कर रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। कि भगवान उसको बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो व्यक्ति, वो भक्त भगवान के दर्शन कर सकता है। और ब्रह्मा जी भी इस बारे में वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि जो भक्त, जिन भक्तों की आँखों में भक्ति का सुरमा लगा हुआ है, वो सदैव संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनकी आँखों में भक्ति का सुरमा लगा है वो सदैव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो अभक्त हैं, जो भगवत विद्वेषी हैं, वो उनकी हालत भगवान शरीर के अंगों की तरह है, भगवान के विराट शरीर के, जो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन भगवान के दर्शन कभी भी नहीं कर सकते। सो भगवान के दर्शन करने की विधि है कि भगवान को समर्पित हुआ जाए और भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य किया जाए। बहुत ही योग का अर्थ आम तौर पर यह बताया जाता है, योग का अर्थ है जोड़ना, और भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति में जुड़ना, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। लेकिन प्रभुपाद भागवतम में योग की एक बहुत ही विलक्षण परिभाषा दे रहे हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं योग का अर्थ है भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना। इस परिभाषा में पूरा भक्ति योग शामिल है, पूरा भक्ति योग सम्मिलित है। और वो भक्ति योग कैसे व्यवहारिक रूप से करना है वो भी इस परिभाषा में आया हुआ है कि योग का अर्थ है भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना। और भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है, जिस प्रकार इस श्लोक में और इससे पीछे श्लोकों से पता चलता है कि देवी देवताओं के जन्म लेने के बाद उनको अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा था कि उनका क्या कर्तव्य है और उन्हें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को जानने के लिए और उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, और भगवान उन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर देवी देवताओं को भगवान ने शक्ति प्रदान की। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि देवी देवताओं को क्यों भगवान ने सृष्टि का कार्यभार सौंपा, क्योंकि जो देवी देवता हैं उन्होंने इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की अपनी जो इच्छा है उसको त्याग दिया है, उसको शांत कर दिया है। हाँ, सो जिस प्रकार देवी देवताओं को भगवान ने शक्ति प्रदान की है सृष्टि का कार्यभार संभालने की, उसी प्रकार हमें भी भगवान ने शक्ति प्रदान की है कि हम कार्य कर सकें, अपने घर का और समाज का कार्यभार संभाल सकें। ये शक्ति भी हमें भगवान से ही प्राप्त हो रही है, इस बारे में हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर हम उच्चतर जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं तो हमें इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा को छोड़ना होगा। जितना ही हम इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा का त्याग करेंगे उतना ही भगवान हमारी क्षमता को देखकर, हमारी इच्छा को देखकर भगवान हमें और अधिक जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, जैसे उन्होंने ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवी देवताओं को सौंपी हुई है। स्वर्ग इत्यादि जो उच्चतर लोग हैं वहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो सतोगुण में स्थित हैं, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव या तो नहीं है या बहुत ही कम है। भौतिक जैसे मृत्यु लोक है यहाँ पर तीनों गुण समान रूप से मौजूद हैं। जैसे जैसे आप नीचे के लोकों में जाते जाएंगे सतोगुण का प्रभाव घटता जाएगा, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाएगा, और नीचे के लोकों में जाएंगे तो सिर्फ तमोगुणी मिलेगा वहाँ पर। और इतना अंधकार होता है कि सूर्य की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बिल्कुल अंधेरे में एकदम, ज्ञान के प्रकाश से भी विहीन और सूर्य के प्रकाश से भी विहीन लोग वहाँ पे जीवन यापन करते रहते हैं। क्योंकि देवी देवता सतोगुण में स्थित हैं, इसलिए अधिक लंबे समय तक जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यद्यपि देवी देवताओं को यह बोध होता है, उन्हें यह पता होता है कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ साथ उनके पास अनेक सुविधाएं भी उनको दी जाती हैं, तो कई बार उन सुविधाओं से भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कुछ समय के लिए कि वास्तव में वे भगवान के सेवक हैं, अपने जो वास्तविक उनकी स्थिति है, जो उनका स्वरूप है, वो उसकी उनको विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हम भागवतम और अन्य ग्रंथों में देख सकते हैं कि किस प्रकार इंद्र इत्यादि देवी देवता सुविधाओं के ऐश्वर्य से भ्रमित होकर कभी कभी तो भगवान के विरुद्ध ही अपराध कर बैठते हैं, गुरु के प्रति अपराध कर बैठते हैं और इसका उनको दंड भी भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं कि जब वामन देव इंद्र के पास गए तो वामन देव जो कि स्वयं भगवान है, उनकी सेवा करने की जगह इंद्र ने उनसे सेवा करवाई और इंद्र ने उनको बोला कि जाओ बलि महाराज, मेरा राज्य मुझे वापस दिलवा दो। जबकि उन्हें अगर इंद्र भगवान से शुद्ध भक्ति मांगते तो क्या भगवान वामन देव इंद्र को उसका राज्य नहीं दिलवाते, लेकिन ऐश्वर्य से इतना अभिभूत हो जाते हैं देवी देवता कि भगवान की सेवा का साक्षात अवसर मिलने पर भी उस अवसर को ठोकर मार देते हैं और भगवान को ही अपने कोई ना कोई सेवा सौंप देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में कोई भी शर्म या हीनता का अनुभव नहीं करते और इस जगत को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद भगवान को आता है जो बिना किसी भगवान के किसी भी ऐश्वर्य से प्रभावित हुए बिना भगवान से आदान प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसों में भगवान से हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। पांच मुख्य रसों में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई, अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया और इंद्र ने वामन देव जी को भेजा बलि महाराज के पास, तो दिखने में लगता है कि दोनों जगह जो भक्त हैं वो भगवान से सेवा ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा फर्क है इंद्र के सेवा मांगने में और अर्जुन द्वारा भगवान से सेवा लेने में, बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन भगवान से बहुत ही विनीत भाव से और भगवान बड़े ही संकोच से भगवान से सेवा मांग रहे हैं, जबकि इंद्र भगवान वामन को अपना छोटा भाई मानकर बहुत ही अधिकार से उनसे सेवा ले रहा है। इंद्र की इच्छा उसके पीछे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की है, जबकि अर्जुन भगवान की सेवा के लिए ये कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अर्जुन है वो भगवान से सेवा ले रहा है। तो दोनों में बहुत फर्क है, ऐसा नहीं कि भगवान से कुछ मांगा नहीं जा सकता, लेकिन जब भगवान से मांगा जाए तो इसके पीछे क्या भावना है, वो भावना का बहुत महत्व है। हम भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन वो भगवान से मांग के पीछे अगर भक्त का उद्देश्य भगवान की सेवा करना ही है तो भगवान इससे और अधिक खुश होते हैं। यद्यपि अगर भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान उससे भी, भगवान को वो भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से अगर मदद मांगी जाए तो भगवान को और ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने भगवान की बहुत बड़ी सेवा की, हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए या हमने लाखों रुपए की पुस्तकें वितरित कर दी, वो सब करने की क्षमता भगवान से ही प्राप्त हो रही है। तो अगर भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके भगवान की कुछ सेवा कर दी तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा विनीत भाव से रहना चाहिए। अन्यथा इंद्र और ब्रह्मा जैसे जो देवता हैं, इतने प्रमुख देवता हैं, जब वो भी विमोहित हो जाते हैं तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के कहना ही क्या। हमारे भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होने की बहुत ही अधिक संभावना है। अगर हम विनीत भाव से नहीं रहेंगे तो भगवान अगर हमें कोई जिम्मेदारी सौंप भी देंगे तो उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए जो शक्ति भगवान देंगे उस शक्ति से हम अभिभूत हो सकते हैं और हमारे मन में अभिमान आ सकता है, और कई बार उस अभिमान के चलते हम भगवान पर ही आक्रमण कर देते हैं, जैसा कि इंद्र ने वृंदावन ब्रजवासियों पर संवर्तक बादलों द्वारा वर्षा करके किया। ऐसे कार्यों से भगवान को कोई हानि नहीं होती, ना ही भगवान के भक्तों को कोई हानि होती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है उसको जरूर नुकसान पहुंचता है, और भगवान उसका जो अभिमान है वो चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से जब भी कुछ मांगे तो भगवान की सेवा के निमित्त ही मांगना चाहिए, और प्रभुपाद इसकी व्याख्या और भी अच्छे ढंग से भागवतम के श्लोकों में कर रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान को तीन माध्यमों से जाना जा सकता है, और वो तीन माध्यम कौन से हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो लोग इस भौतिक संसार से पूरी तरह से अनासक्त हैं वो लोग ज्ञान योग का मार्ग अपनाते हैं, और जिन लोगों में अभी भोग की इच्छा है तो उनके लिए भगवान ने कर्म योग का मार्ग दिया। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग इस भौतिक जगत से ना तो आसक्त हैं और ना ही अनासक्त हैं, ना ही उनको इस भौतिक जगत से ईर्ष्या या घृणा या वैराग्य है, ना ही वो इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने भक्ति योग का सुझाव दिया है, और उन लोगों को वैष्णव या भक्त के नाम से भी जाना जाता है। सो, एक प्रश्न कल हम चर्चा कर रहे थे तो प्रश्न उठा था कि क्या लोगों को जो समाज में जो छोटे हैं क्या उनको बड़ों के पैर छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए। तो अगर हम इन तीन योगों के अगर दृष्टिकोण से देखें तो हमें इसका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग इस भौतिक जगत से आसक्त हैं और जो अभी कर्म योग के अधीन हैं, जो कि उचित अनुचित का विचार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अवश्य ही उन्हें इस समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, और बड़ों के, वरिष्ठ जो लोग हैं उनके पैरों को छूना चाहिए। लेकिन जो लोग इस भौतिक जगत से ना तो आसक्त हैं ना आना सकते हैं, और जो भक्ति योग में लगे हुए हैं उन्हें इन सामाजिक शिष्टाचारों में पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वो केवल भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि गुरु हैं, अगर वे केवल उनके प्रति नतमस्तक हों तो भी उनको पूरा लाभ मिलेगा, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन तीन जो योग के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, तो वहाँ पर प्रभुपाद ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के भगवान की सेवा करता है, कोई यज्ञ इत्यादि संपन्न करता है, तो उन यज्ञों के परिणाम स्वरूप उसको स्वर्ग इत्यादि लोगों की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने उस संकल्प से, उस इच्छा से वो भौतिक यज्ञ संपन्न किए थे। वो बिना किसी इच्छा के भगवान की प्रसन्नता के लिए उन यज्ञों को पूरा कर रहा है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को परिणाम स्वरूप वो यज्ञों को संपन्न करने के फल स्वरूप उसको किसी भी कोई भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, वो स्वर्ग इत्यादि लोगों में नहीं जाता, बल्कि उन यज्ञों को करने से वह भगवान को प्रसन्न कर पाता है और भगवान को प्रसन्न करने के कारण उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वो भक्ति के स्तर में और अधिक ऊपर उठता है। सो यही भगवान को जानने की विधि है कि अपने को बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण अपने को नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि हम बहुत अधिक सेवाएं कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, तो हम और लोगों से श्रेष्ठ हैं। कभी भी ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए, बल्कि यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत ही ये सुअवसर प्रदान किया है, भगवान ने हम पे ऐसी असीम कृपा की है, और क्योंकि भगवान भक्ति की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, भगवान बताना चाहते हैं कि भक्ति कितनी महान है, इस महिमा को बताने के लिए भगवान ने हम जैसे तुच्छ पापी विद्वेषी लोगों को भी भगवान ने भक्ति करने का अवसर प्रदान किया है। भगवान ये भक्ति और लोगों को भी भगवान दे सकते थे, लेकिन भगवान ने हम पर विशेष रूप से कृपा की क्योंकि हमने भक्तों का संग किया था, भक्तों की सेवा की थी। सो ये सोचकर अपने आप को तुच्छ, अपने आप को विनीत भाव में लाना चाहिए और ना कि गर्वित महसूस करना चाहिए कि हम तो रोज़ 16 माला का जप कर रहे हैं। ऐसा सोचने से भक्ति में लंबे समय तक चलने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जितना ही भक्त विनीत भाव से रहेगा उतना ही वो अच्छे से भक्ति कर पाएगा, और चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए एक पूरा श्लोक इसी भाव के ऊपर समर्पित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि घास के तिनके से भी अधिक अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए और एक वृक्ष की तरह सहिष्णु रहना चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष पर कोई पत्थर भी मारे तो वृक्ष उत्तर में पत्थर नहीं मारता बल्कि फल दे देता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी भक्त के प्रति कितना भी अपराध क्यों ना करे, उसको कितनी मुश्किलों का सामना क्यों ना आए, भक्त को हमेशा विनीत बने रहना चाहिए और उसे दूसरे लोगों के कल्याण के लिए हमेशा विचाररत रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अमाने ना मान देन कीर्तनीय सदाहरी, कीर्तनीय सदाहरी कि भगवान का सदैव कीर्तन किया जा सकता है, अगर अमानी ना, अगर अमानत हुआ, अगर अपने आप को किसी भी सम्मान के योग्य ना समझते हुए कि मुझे सम्मान देने की क्या आवश्यकता है, मैंने किया ही क्या है, अगर ये विचार अपने मन में लाते हुए और दूसरों की छोटी सी छोटी सेवा को भी बहुत अधिक महत्व देते हुए, बहुत प्रशंसा करते हुए जो भक्त अपना जीवन व्यतीत करता है, वही कीर्तने सदारी, वही सदैव भगवान का भजन कर सकता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो भागवतम में सृष्टि भगवान ने कैसे की, कैसे जो भगवान के रोम कूपों से अनेक ब्रह्मांड निकले, बिल्कुल धूल के कणों की तरह जो ब्रह्मांड निकले, और कैसे वो ब्रह्मांडों ने इतना विशालकाय रूप बना लिया कि जो वैज्ञानिक है अनेक वर्षों से पूरे ब्रह्मांड को समझने में लगे हुए हैं लेकिन उसके 1% को भी नहीं समझ पा रहे। इतना विशालकाय रूप किस प्रकार से ब्रह्मांडों ने धारण कर लिया, और किस प्रकार वो ब्रह्मांड जो हैं, जो कि अंधकार से पूर्ण थे और बिल्कुल खाली थे, किस प्रकार वहाँ पर जल, प्रकाश इत्यादि सुविधाएं प्राप्त हुई, और किस प्रकार जीवों की उत्पत्ति हुई, और किस प्रकार जो हरेक जीव अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शुष्क ज्ञान है। जो भी ज्ञान हमें भगवान की महिमा को समझने में मदद कर रहा है, जिस भी ज्ञान से हम भगवान की महानता को, भगवान के यश को हम और अधिक से समझ सकें, वो शुष्क ज्ञान नहीं है। शुष्क ज्ञान और भगवत ज्ञान में बहुत फर्क है। जो वैज्ञानिक हैं और जो निर्विशेषवादी हैं, वो हर एक वस्तु को, पूरे जगत को भगवान से अलग करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और इसीलिए उसको शुष्क ज्ञान कहा जाता है। जिस प्रकार निचड़े हुए गन्ने में से उसको जितना भी चबाया जाए उसमें से रस की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग बांस और गन्ना, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं, तो कई लोग हो सकता है बांस को चबाएं और सोचें कि इसमें से रस नहीं मिल रहा। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के विद्वेषी हैं, वो बांस को चबा रहे हैं गन्ना समझ के और सोच रहे हैं कि इसमें से रस नहीं मिल रहा। लेकिन जो भक्त है वो भगवान से संबंधित करके हर ज्ञान को समझने के कारण उसको सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो रही है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे सृष्टि कार्य कर रही है, इसको जानने से भी उसको रस मिलता है, भगवान के बारे में और अधिक अच्छे से समझ सकता है। ये समझना इसलिए भी आवश्यक है ताकि जब हम आगे बढ़ते हुए, जब हम दशम स्कंद तक पहुँचेंगे और भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो उस समय हम ये समझने की भूल नहीं करेंगे कि भगवान तो हमारी तरह ही हैं, जंगल में जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हाँ दूसरी जो है स्त्रियाँ उनके साथ विहार कर रहे हैं। तो हम ये समझने की भूल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये जान चुके होंगे, हमें बार 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 बार, हम जब तक दशम स्कंद तक पहुँचेंगे हम हजारों बार ये सुन चुके होंगे कि किस प्रकार जो है हर एक वस्तु भगवान से ही उत्पन्न है और भगवान की सेवा के निमित्त ही है। जब ये बात हमारे मन में पूरी तरह से घर कर चुकी होगी और उस समय जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो हमें और भी अधिक भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा और हम भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझने की भूल नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा वृतांत चल रहा है इसको हमें अच्छे से इसका अध्ययन करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं कि वैकुंठ लोकों में भगवान अनेक प्रकार से सेवित होने के बावजूद भी भगवान बद्ध जीवों के बारे में ध्यान रखते हैं और उनके उद्धार हेतु भगवान बार बार सृष्टि की रचना करके उन्हें वापस भगवत धाम आने का अवसर प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो क्या भौतिक जगत में प्रश्न है कि भौतिक जगत में क्या जो तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, क्या ये समान है? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि समान है भी और नहीं भी है। समान किस प्रकार से नहीं है कि इन तीनों गुणों की अपने विशिष्ट लक्षण हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, और जो सतोगुणी व्यक्ति है उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो किस प्रकार से समान है, तो जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण है, हालांकि उनका व्यवहार अलग अलग है और इनकी तुलना की गई है लोहे से, चांदी से और सोने से, लेकिन ये तीनों जो हैं ये बंधन है। ये तो बंधन के रूप में ये तीनों समान है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को लोहे की जंजीर से बांधा जाए या चांदी की जंजीर से बांधा जाए या सोने के जंजीर से बांधा जाए, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो पराधीन हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य चाहे वो सोचे कि मैं तो सतोगुण में स्थित हूँ लेकिन हो तो बंधन में ही, तो ऐसा जो व्यक्ति है चाहे वो सतोगुण में ही क्यों नहीं स्थित हो, वो व्यक्ति तमोगुण में स्थित व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता भी सीमित होती है, वो भी पराधीन होता है। सो भौतिक गुण आप बोलो कि समान है या नहीं, तो समान भी हैं और अलग भी हैं। किसकी भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, आप ये जो वृत्तांत चल रहा है आप इसके पिछले अध्यायों का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भौतिक जगत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। हाँ, रजोगुण से हुई है। कौन बता रहा है आपको, किसने बताया है? हाँ, अहंकार से
अहंकार मिलता है।
हाँ, सो तीनों गुण काम करते हैं। जब महत्व तत्व से झूठा अहंकार मिलता है और फिर झूठा अहंकार जो है वो तीनों गुणों से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जो झूठा अहंकार है वो सिर्फ रजोगुण से ही प्रतिक्रिया कर रहा है, जो झूठा अहंकार है वो सतोगुण से भी प्रक्रिया करता है, जिससे कि भौतिक इंद्रियां और देवी देवता उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से जब वो कार्य करता है तो भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से जब वो कार्य करता है तो अनेक और विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सो ऐसा नहीं है कि जो झूठा अहंकार है वो केवल रजोगुण से ही प्रतिक्रिया कर रहा है, तीनों गुणों से प्रतिक्रिया कर रहा है, और तीनों गुणों से प्रतिक्रिया करने के फलस्वरूप विभिन्न पूरी सृष्टि के विभिन्न स्वरूपों की रचना हुई। तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि केवल रजोगुण से ही भौतिक प्रकृति की रचना हुई है। भौतिक प्रकृति की रचना में तीनों गुणों का समान रूप से योगदान है। ठीक है, सो प्रश्न है कि हमने प्रवचन में बात किया कि विनम्रता का अनुशीलन करना चाहिए। सो जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि अपने संबंधियों को मार दो, तो उसमें विनम्रता कहाँ है, है ना? विनम्रता का अर्थ है धर्म का पालन करना, और धर्म की परिभाषा भागवतम में दी गई है। यमराज जी कह रहे हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो धर्म है वो भगवान की वाणी है। सो अगर भगवान अगर अर्जुन को कह रहे हैं अपने संबंधियों का वध कर दो, तो वो धर्म है, और उस धर्म का पालन करना अर्जुन के लिए विनम्रता का परिचायक है। अगर अर्जुन अहिंसा का पालन करता तो वो हिंसा होती। विनम्रता का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि झुके रहना, विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना। सो अभी पीछे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर हो रहा था, तो वहाँ पर पंजाबी बाग के अध्यक्ष रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने प्रश्न पूछा कि विनम्रता के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जब मंदिर का प्रबंधन किया जाता है तो उसमें कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या हिंसा या विनम्रता की कमी नहीं दिखती है क्या उसमें? तो वहाँ पर गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि विनम्रता का अर्थ नहीं है कि आप अन्याय को भी सहते रहो, विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। जिस प्रकार हनुमान जी ने अत्यधिक क्रोध का प्रदर्शन किया, तो जब हनुमान जी ने क्रोध का प्रदर्शन किया तो वो हिंसा नहीं है, वो विनम्रता है उनकी। विनम्रता का अर्थ है भगवान के उद्देश्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना, वही असली विनम्रता है। उसके लिए अगर कठोरता दिखाई जाए तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वो जो हिंसा या जो कठोर व्यवहार है वो आप दूसरों के कल्याण के हेतु कर रहे हो या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कर रहे हो। अगर आप अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी को कठोर वचन बोल रहे हो तो वो विनम्रता नहीं है, वो अहिंसा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के कल्याण के लिए उसको अगर डांट भी देते हो तो वो अच्छी बात मानी जाती है, उसमें दोष नहीं आता। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को कई बार थप्पड़ भी मार देते हैं, उसको डांटते भी हैं उसकी भलाई के लिए, तो उसमें उसको दोष नहीं दिया जाता। इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत में मिलता है। चैतन्य चरितामृत में क्योंकि जगन्नाथ मिश्र निमाई पंडित को डांटते रहते थे, ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि निमाई पंडित बहुत शरारती थे। वो लोग जब ब्राह्मण सुबह के समय स्नान कर रहे होते थे या संध्या के समय गंगा नदी में जनेऊ लपेटकर गायत्री का जप करते थे तो पानी में डुबकी लगा के नीचे आते थे और उनके पैर खींच लेते थे, धड़ाम से पानी में गिर जाते थे ब्राह्मण। और जो वहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं और जो लड़कियाँ हैं वो पूजा की सामग्री लेके आती थी, वो सारी सामग्रियाँ ख़राब कर देते थे। और जो भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाइयाँ इत्यादि लाते थे खुद खा जाते थे, हार अपने आप डाल लेते थे। तो लोग जाते थे शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र के पास कि देखो आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। और पढ़ाई से भी भाग जाता है, स्कूल जाता नहीं है, स्कूल जाने की जगह गंगा किनारे चला जाता है और वहाँ पर जो है अनेक प्रकार से उत्पात मचाता है। तो जगन्नाथ मिश्र डांटते थे निमाई पंडित को, ऐसा कर दिया, कमरे में कुंडी भी लगा देते थे, कई बार कमरे में बंद कर देते थे ताकि ये भाग ना जाए बाहर और शरारत नहीं करे। तो देवी देवता देख रहे थे क्या कर रहे हैं, तो देवी देवताओं ने अपना एक दूत भेजा जगन्नाथ मिश्र के पास और उनको बोला कि देखो आप जो है ये निमाय पंडित स्वयं भगवान है, आप इनको डांटो मत, ये बुरी बात है। जगन्नाथ मिश्र ने कहा भैया अपने घर जाओ, वो भगवान होगा तुम्हारे लिए, मेरा तो बेटा है और पिता का कर्तव्य है अपने बेटे को सुधार कर रखना, उसको जो भविष्य में जो उसके लिए अच्छा हो, अगर अच्छाई के लिए डांटना भी पड़े तो डांटने से परहेज नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं तो डांटूंगा। तो उन्होंने प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्र के चरणों में, कितना ऊंचा भाव था उनका। वो प्रभावित नहीं हो रहे थे कि निमाय पंडित भगवान है, वो सोच रहे हैं कि मैं वत्सल्य भाव में हूँ और मेरा फर्ज है। यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को बांधा तो क्या उनको दोष लग गया? तो दोष नहीं है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी कार्य किया जाए वो हिंसा नहीं है, और जिस कार्य में भगवान की इच्छा पूर्ति नहीं हो वो दोष है, वो गलत है और उसका पाप भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं तो धर्मराज हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के जो रथ का पहिया है वो जमीन पर कभी नहीं छूता था, दो उंगली ऊपर रहता था। जैसे ही उन्होंने भगवान के इस आदेश को मानने में थोड़ा सा संकोच किया, उनके रथ का पहिया जमीन से लग गया। सो अधर्म है भगवान के आदेश को नहीं मानना, अधर्म है, हिंसा है या अहंकार है अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानना। विनम्रता का वास्तविक अर्थ है भगवान की इच्छा को कुछ भी कीमत देनी पड़े देकर पूर्ति करना। भगवान का उद्देश्य था इस संसार से, जो पृथ्वी दुष्ट असुरों के भार तले दबी हुई थी और भगवान उस भार को हल्का करना चाहते थे, पृथ्वी को जो है कुछ राहत देना चाहते थे। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने अर्जुन को एक निमित्त बनाया। और भगवान कह भी रहे हैं भगवद गीता में, निमित्त मात्र भव सव्य साचे। तो अगर अर्जुन भगवान की उस इच्छा को पूरी नहीं करता, भगवान के उद्देश्य में अपना सहयोग नहीं देता, तो वो अहंकार होता। भगवान के आदेश को, भगवान की इच्छा को पूरा करना वास्तव में विनम्रता है। और अर्जुन अहंकारी नहीं, अर्जुन बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। ठीक है, सो बार बार हम प्रायश्चित किए जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बार बार प्रायश्चित कर रहे हैं, फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति क्यों नहीं जा रही है, यही प्रश्न है आपका। तो ये प्रश्न तो भागवत में पूछा हुआ है कि परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि जो जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखो जो भी पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित कर लो मरने से पहले, तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने कहा, संतुष्टि नहीं हो रही मुझे आपके उत्तर से, आपका उत्तर बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग प्रायश्चित करते हैं फिर पाप में लग जाते हैं, और श्रील प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उसमें भी श्रील प्रभुपाद इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति चोर है, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, जेल में डाल दिया और वहाँ पर उसको सज़ा मिली, कुछ वर्षों तक उसने सजा भुगती, जेल से बाहर आया तो क्या किया, फिर से चोरी की। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति होती है ये यौन रोगों की तरह होती है, किसी को यौन रोग हो गया, उसने उपचार किया ठीक हो गया, लेकिन वापस दोबारा से रोग, उसको यौन रोग लग जाते हैं, है ना। आज आप आज की अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति का एक सूचना है कि एक व्यक्ति को लोगों को सताने के लिए, चोरी डाके करने के लिए उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, एक साल तक जेल में बंद रहा, दो दिन पहले बाहर निकला, अगले दिन उसने एक छोटी बच्ची को अगवा कर लिया और कुकर्म करके उसको मार दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि जब वो जेल में था और उसने सजा भुगती एक साल तक, तो उसको सुधर जाना चाहिए था, लेकिन वो सुधर नहीं पाया, वो मौका मिलने पर उसने दोबारा जो है पाप किया। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि लोग तो बार बार पाप किए जा रहे हैं, तो प्रायश्चित करने का लाभ ही क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और उन्होंने बोला कि जो प्रायश्चित है ये तो हस्ती स्नान की तरह है, हाथी के स्नान की तरह है, जिस प्रकार हाथी नदी में जाता है और बहुत अच्छी तरह से स्नान करता है, लेकिन जब नदी से बाहर आता है तो अपने शरीर को सुखाने के लिए वापस अपने ऊपर धूल डाल लेता है, नहीं। सो ऐसे प्रायश्चित का, ऐसे स्नान का फायदा ही क्या है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। सो मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने पाप करने की प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पाप करने की प्रवृत्ति जब तक हमारे मन में मौजूद रहेगी, तब तक ना चाहते हुए भी हम लोग पाप करेंगे। बलाद इवा नियोजिता, कि बलपूर्वक कोई पाप में लगाएगा, हम नहीं चाह रहे लेकिन इतनी प्रबल इच्छा होती है पाप करने की, अनाचार करने की, कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति उस वेग में उस क्षण बह जाता है और बाद में चाहे पश्चाताप करता रहे लेकिन वो क्षण अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और पाप कर बैठता है। सो अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, बलात् इव नियोजिता, मेरा मन नहीं कर रहा, अनिच्छन अपि, कि मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मुझे कोई बलपूर्वक पाप में लगा रहा है, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति है ना। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि हाँ, ये पाप करने की जो इच्छा है, ये पाप करने की इच्छा ये रजोगुण और क्रोध से उत्पन्न होती है। तो आप जो है ये पाप करने की इच्छा का शमन कीजिए, रजोगुण को, तमोगुण का शमन करके, उसको हटाकर। और उसको हटाने की विधि है कि भक्तों के संग में रह जाए और भगवान के दिव्य नामों का निरंतर जप किया जाए। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो उससे चेतो दर्पण मार्जन, हमारे मन की शुद्धि होगी, हमारा मन साफ होगा। मन साफ होने का मतलब है जो हमारे मन में पाप करने की वृत्ति है, वो पाप करने की वृत्ति हमारे मन से हटेगी और हम शुद्ध मन से, विनीत भाव से भगवान की सेवा में लग पाएंगे। ठीक है, और किसी का प्रश्न हो तो। सो प्रश्न है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो भी तो भगवान के अवतार ही हैं, तो हम भगवान बुद्ध को भगवान क्यों नहीं मानते, हम उनको उनकी शिक्षाओं पर क्यों नहीं चलते हैं, हम है ना।
ये बोला जाता है कि वो वेदों के हिसाब से उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने नकार
दिया। हाँ, है ना। सो हम भगवान बुद्ध को भगवान मानते ही हैं और इसलिए तो हम उनको भगवान बुद्ध कह रहे हैं, है ना। हम उनको भगवान बुद्ध मानते हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने वेदों को नकारा इसलिए हम उनके आदेशों का पालन नहीं करते, हम उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करते, क्योंकि जो वेद हैं वो भगवान की वाणी है और हम वेदों के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। शास्त्र जो हैं, शास्त्र भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, बिना शास्त्रों के भगवान को नहीं जाना जा सकता। सो अगर भगवान भी आके कहें कि आप शास्त्रों को मत मानो तो हम ऐसे आदेशों को नहीं मानते। भगवान बुद्ध आए थे शास्त्रों का, उन्होंने वेदों का उल्लंघन करने की, उसकी वेदों को ना मानने की उन्होंने शिक्षा दी, उसके पीछे उनका एक उद्देश्य था। भगवान बुद्ध एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के कारण यहाँ आए थे। जब पूरा संसार वेदों का गलत प्रयोग कर रहा था मांसाहार के लिए, वेदों में वर्णित जो यज्ञ इत्यादि हैं उसका प्रयोग कर रहा था बड़े स्तर पर पशुओं का वध करने के लिए, तो लोगों को इस पशु वध के पाप से हटाने के लिए, उनको उससे निरत करने के लिए, उनसे उनका मन उचाट करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला कि देखो, तुम वेदों का पालन करके पशु हत्या कर रहे हो, वेद बेकार हैं, वेदों को छोड़ो। लेकिन जो वेदों की परम शिक्षा थी वो उन्होंने फिर भी संभाल के रखी, जो वेदों की जो परम उद्देश्य है वो भगवान की शरण लेना है। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने असुरों को छला, असुरों को धोखा देकर उन्हें भक्ति में लगाया, उनको बोला कि आप वेदों को छोड़ दो, जब आप वेदों को छोड़ दोगे तो वेदों में जो यज्ञ लिखे हैं, जिन यज्ञों का वर्णन है, उनको भी त्याग दोगे, जब उनको त्यागोगे तो पशुवध बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अहिंसा का पालन करो और मेरी शरण में आ जाओ, जो कि भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का और भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में उपदेश दिए हैं उनका पालन करके, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में और भगवद गीता में कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम भगवान की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान बुद्ध को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों की अवहेलना करने का जो है निर्देश दिया उन्होंने। ठीक है, सभी काफ़ी टाइम हो गया है, सो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।